नमस्कार। क्या ये सचमुच हो सकता है कि कोई साधारण सा इंसान सोना बन जाए? आज हम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के एक बड़े ही दिलचस्प विचार पर बात करने वाले हैं, पारस छूकर सोना बनने का तरीका। हमारे पास उनका एक उद्बोधन है और हम कोशिश करेंगे ये समझने की कि कैसे कोई भी व्यक्ति, मतलब हम और आप जैसे लोग, एक ऊंची शक्ति से जुड़कर खुद को पूरी तरह बदल सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कहते हैं ना कि लोहा अगर पारस पत्थर को छूए तो सोना बन जाता है। तो चलिए इस गहरे विचार को खोलते हैं। पूज्य गुरुदेव शुरुआत में ही एक बहुत पते की बात कहते हैं कि अकेले इंसान की ताकत तो बहुत सीमित है।
हाँ, बस गुजारा लायक।
बिल्कुल, लेकिन अगर कुछ बड़ा करना है, महान बनना है, तो फिर एक बड़ी शक्ति से जुड़ना ही होगा।
उन्होंने उदाहरण भी दिया है, जैसे बल्ब है या पंखा है, वो अपने आप नहीं चलते, उन्हें बिजली घर से जोड़ना पड़ता है।
हाँ, तभी वो चलते हैं।
तो वैसे ही जीवन में अगर रोशनी चाहिए, गति चाहिए, तो उस परम शक्ति जिसे भगवान कहा गया है उससे जुड़ना होगा।
और इस जुड़ने की जो प्रक्रिया है उसे पूज्य गुरुदेव ने उपासना कहा है।
जी, उपासना,
जिसका सीधा सा मतलब है पास बैठना।
पास बैठना,
लेकिन ये सिर्फ फिजिकली, मतलब शरीर से पास बैठना नहीं है, यहाँ गहरा मतलब है।
अच्छा, वो क्या?
जैसे कहते हैं कि चंदन के पेड़ के पास अगर कोई और झाड़ भी उग जाए तो उसमें भी चंदन की खुशबू आने लगती है।
हाँ, सुना है।
तो वैसे ही उस महान सत्ता के पास बैठने का, उपासना का मतलब है उसके गुणों को अपनाना, अपने अंदर उतारना।
ओहो।
तो ये सिर्फ बैठने की क्रिया नहीं, गुणों का आत्मसातीकरण है।
बिल्कुल, इसीलिए वो पारस का उदाहरण देते हैं। लोहा पारस के सिर्फ पास नहीं रखा रहता, वो उसे छूता है, उसके गुणों को अपनाता है और तब सोना बनता है।
सही बात है।
इसी तरह कहते हैं कि भगवान रूपी कल्प वृक्ष के नीचे बैठने से कामनाएं पूरी होती हैं, या अमृत पीकर अमरता मिलती है आत्मा के स्तर पर। शरीर तो नश्वर है ही।
मुझे वो पतंग वाला उदाहरण भी बहुत अच्छा लगा। जैसे पतंग है, अगर डोर ना हो
तो जमीन पे गिर जाएगी, बेकार पड़ी रहेगी।
हाँ,
लेकिन अगर वही डोर किसी कुशल उड़ाने वाले के हाथ में हो, मान लीजिए भगवान के हाथ में, तो वही पतंग कितनी ऊंची उड़ान भरती है।
बिल्कुल।
या फिर कठपुतली की तरह, धागा अगर बाजीगर के हाथ में है तो वो कितना सुंदर नाच दिखाती है। मतलब जीवन का नियंत्रण जब उस शक्ति के हाथ में होता है तो सब ठीक रहता है।
लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, ये जुड़ाव, ये उपासना होगी कैसे? क्या ये बस सोचने से हो जाएगा?
नहीं, यही तो महत्वपूर्ण बात है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस जुड़ाव से पहले सबसे जरूरी कदम है अपनी सफाई।
अपनी सफाई मतलब?
मतलब खुद को साफ करना। जैसे अगर आईना मैला हो, धूल जमी हो, तो उसमें चेहरा साफ दिखता है क्या?
नहीं, बिल्कुल नहीं, धुंधला दिखता है।
तो बस वैसे ही अगर हमारा मन मैला है, उसमें कई तरह के विकार हैं, बुराइयां हैं, तो उसमें परमात्मा का प्रतिबिंब कैसे दिखेगा, उससे जुड़ाव कैसे होगा?
अच्छा, तो पहले खुद को तैयार करना है, साफ करना है।
जी, और इसी तैयारी के लिए गुरुदेव दैनिक पूजा के पंचकर्म बताते हैं, पवित्रीकरण, आचमन, प्राणायाम, न्यास, शिखा बंधन।
हाँ, ये तो हम पूजा में करते ही हैं।
पर ये सिर्फ बाहरी रस में नहीं है, ये तन और मन दोनों की शुद्धि के, सफाई के तरीके हैं, बाहरी भी और भीतरी भी।
और जप या नाम स्मरण, कई लोग तो सोचते हैं कि ये बस भगवान की खुशामद करना है।
नहीं नहीं, गुरुदेव इसे बिल्कुल अलग तरह से समझाते हैं। वो कहते हैं जप या नाम स्मरण भगवान की खुशामद नहीं, बल्कि अपने मन को धोने का, रगड़कर चमकाने का तरीका है।
रगड़कर चमकाने का?
हाँ, जैसे साबुन लगाकर कपड़े को धोते हैं तो मैल कट जाता है ना।
हाँ,
या जैसे पत्थर पर अगर रस्सी लगातार घिसती रहे तो निशान बन जाता है।
हाँ, बन जाता है।
तो बस वैसे ही नाम स्मरण लगातार करने से मन पर जमे हुए विकार, मैल धीरे धीरे कटने लगते हैं, मन साफ होने लगता है।
अरे वाह, ये तो बिल्कुल नई तरह से सोचना हुआ। और वो जो पूजा में हम चीजें चढ़ाते हैं, जल, फूल, दीपक, नैवेद्य, अक्षत, उनका क्या मतलब है? वो भगवान के लिए है?
देखिए, गुरुदेव कहते हैं कि भगवान को इन चीजों की जरूरत नहीं है, ये उनके लिए कोई रिश्वत नहीं है।
तो फिर
ये असल में आत्म शिक्षण के प्रतीक हैं, खुद को सिखाने के।
खुद को सिखाने के कैसे?
जैसे जल चढ़ाते समय हम संकल्प लेते हैं कि हमारा जीवन भी जल की तरह निर्मल, शीतल और परोपकारी बनेगा, दूसरों की प्यास बुझाने वाला।
अच्छा।
फूल चढ़ाते हुए याद करते हैं कि जीवन फूलों की तरह खिला हुआ, सुगंधित हो, दूसरों को खुशी दे, मुरझाया हुआ ना हो।
और दीपक?
दीपक जलाना मतलब अपने जीवन में ज्ञान का प्रकाश लाने का संकल्प, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना, अज्ञान को हटाना।
और नैवेद्य मतलब भोग,
उसका मतलब है हमारे व्यवहार में, हमारी वाणी में मिठास आए, कड़वाहट ना हो।
और अक्षत यानी चावल,
अक्षत का मतलब है कि हमारी जो भी कमाई है, जो भी साधन है, उनका एक अंश हम शुभ कार्यों में, दूसरों की भलाई में जरूर लगाएंगे, उसे केवल अपने लिए ही नहीं रखेंगे।
मतलब पूजा के हर चीज का इतना गहरा मतलब है, ये तो रोज खुद को अच्छी बातें याद दिलाने का तरीका हुआ।
बिल्कुल, ये सब खुद को तैयार करने, साफ करने के ही तरीके हैं। इसी बात को और साफ करने के लिए गुरुदेव एक कहानी सुनाते हैं, एक संत और एक चोर की।
हाँ हाँ बताइए।
एक चोर था, वो संत के पास गया और बोला मुझे भगवान दिखाओ। संत बोले ठीक है चलो, वो सामने वाले पहाड़ पर भगवान मिलेंगे।
अच्छा।
पर एक शर्त है, तुम्हें अपने सिर पर ये चार भारी पत्थर रखकर चढ़ना होगा।
चोर मान गया,
फिर
चढ़ गया। वो
चढ़ने लगा पर थोड़ी देर में हाफने लगा, पत्थर बहुत भारी थे। उसने संत से कहा मुझसे नहीं चढ़ा जा रहा। संत ने कहा अच्छा एक पत्थर फेंक दो। उसने एक फेंका, थोड़ा हल्का लगा। फिर थोड़ी देर बाद और थका, संत ने कहा दूसरा भी फेंक दो।
ऐसे करके उसने सारे पत्थर फेंक दिए।
हाँ, एक एक करके उसने चारों पत्थर फेंक दिए। अब वो बिल्कुल हल्का हो गया और आसानी से शिखर पर पहुंच गया।
तब संत ने क्या कहा?
संत ने पूछा अब कैसा लग रहा है, हल्का महसूस हो रहा है, चढ़ाई आसान होगी ना? चोर ने कहा हाँ महाराज, अब तो बिल्कुल हल्का लग रहा है।
तो ये पत्थर क्या थे?
संत ने बताया ये पत्थर तुम्हारे अपने ही दोष थे, काम यानी अंधी वासना, क्रोध यानी गुस्सा, लोभ यानी लालच, मोह यानी अंधा लगाव, मद यानी अहंकार और मत्सर यानी जलन, ईर्ष्या।
ओहो, हमारे अपने ही अवगुण।
बिल्कुल, जब तक हम इन भारी पत्थरों का बोझ अपने सिर पर लादे रहेंगे तब तक परमात्मा के शिखर तक पहुंचना, उनसे जुड़ना बहुत मुश्किल है, करीब करीब नामुमकिन है।
तो मतलब उपासना से पहले, उस जुड़ाव से पहले अपने अंदर की सफाई, अपने इन दोषों रूपी पत्थरों को फेंकना बहुत जरूरी है।
हाँ, यही उपासना का सार है, पहले आत्म परिष्कार, खुद को धो पहुंच कर साफ करके उस महान सत्ता के स्वागत के लिए तैयार करना। जैसे हम दिवाली पर लक्ष्मी जी के आने से पहले घर की कैसी साफ सफाई करते हैं?
हाँ, खूब करते, कोना कोना चमकाते हैं।
बस वैसे ही परमात्मा से जुड़ने के लिए पहले अपने मन का घर साफ करना होगा, इन पत्थरों को फेंकना होगा।
तो संक्षेप में, पूज्य गुरुदेव का जो ये पारस छूकर सोना बनने का तरीका है, वो कोई बाहरी कर्मकांड या कोई जादू टोना नहीं है।
बिल्कुल नहीं, ये तो एक आंतरिक यात्रा है, खुद को जानने की, अपनी कमियों, अपने दोषों को पहचानने और उन्हें हिम्मत करके दूर करने की।
और जब हम ये कर लेते हैं, खुद को साफ कर लेते हैं, तब उस परम सत्ता के साथ जुड़ाव, वो एकाकार होना संभव हो पाता है।
जी हाँ, तभी दिव्यता का अनुभव होता है, तभी वो पारस का स्पर्श महसूस होता है।
तो आज की इस चर्चा के बाद मुझे लगता है हम सब के लिए सोचने वाली बात यह है कि हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन से भारी पत्थर हैं?
हाँ, कौन से दोष, कौन सी कमियां हैं जिनका बोझ हम ढोरे हैं,
और जिन्हें हमें आज ही अभी से फेंकने की शुरुआत करनी चाहिए, ताकि हम भी उस बदलाव का, उस पारस के स्पर्श का अनुभव कर सके, सोना बनने की दिशा में बढ़ सके।
बिल्कुल, यही शायद इस उद्बोधन का सबसे बड़ा संदेश।